हरे कृष्ण
श्रीमद भागवत महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ दशम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 22 और 23 बोर्ड में 23 है तो उसी को आपूर्ति करते हैं। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम् अप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजा यत् सम्पपद्यत। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम् अप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजा यत् समपद्यत। श्लोक संख्या 22 को भी पढ़ लेते हैं। पूजितः सुखमासिनः पृष्ठानाम् अयमादृतः प्रसक्तधी स्वात्म आजयो इदम् आह विशाम्पते। अनुवाद, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी ही शांति से बैठ गए और आपने दोनों पुत्र के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके विषय में पूछा। श्लोक संख्या 23 की अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद, मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में आपके कोई पुत्र न था, और आप निराश हो चुके थे, अतः आप जबकि आपको पुत्र अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। तात्पर्य, सामान्यतया वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न भी हो तो वह लड़की ही होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि जसोदा को कन्या उत्पन्न हुई है जिसे वे चुरा लाए थे और उसके स्थान में पुत्र छोड़ाए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जानना चाह रहे थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान है या नहीं, किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जन्म तथा जसोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अब भी गुप्त है। इससे किसी प्रकार का खतरा न था क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंस। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अनेक दिनों के बाद में आप श्री कृष्ण बलराम और राधिका राधा राधिका रमण के भक्त और भक्तिन वृंद के संग प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये भागवत के जो दसम स्कंद के जो प्रकरण आप आलोचना कर रहे हैं, ये आज के विशेष करके ये अध्याय के जो चल रहा है और आज के जो दो श्लोक हैं और यही पर्याय इस अध्याय में चलेगा, जिसमें साक्षात भगवान श्री राम श्याम श्री कृष्ण बलराम के दोनों पिताओं के मिलन आप थोड़ा अनुमान लगाइए। भगवान किसको अपने पिता चुनेंगे, ये कोई हेरे गेरे आदमी तो होंगे ही नहीं। कितने उनका विलक्षण गुणावली होगा जिनको साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर को लोभ लगा कि उनको मैं पापा बनाऊं, क्या कम होंगे? वसुदेव किसी कम नहीं थे कि नंद भी तत्वधिक, दोनों ही अगाध पुत्र स्नेह पुत्र वात्सल्य के प्रतिमूर्ति थे। इतने अगाध पुत्र स्नेह था जिनके कारण तो भगवान उनके पुत्र बनने के लिए इच्छा किए, लेकिन भगवान की लीला भी बड़ा गजब है। एक तो वसुदेव इस पुत्र को पाने के लिए कितने दुख उठाना पड़ा। एक समय था पूरे मथुरा जनपद में श्री वसुदेव सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति माने जाते थे, देवता जैसे माने जाते, पूजे जाते थे। हाँ, यहां तक कि कंस भी उनको प्रणाम करता था, वो जानता था ये महान सत्यवादी है, बड़े म्यान प्रिंसिपल है, कंस भी जानता था, उनको सम्मान भी करता था, और बाकी लोगों को तो कहना ही किए, उनको तो उनका एक नाम था अनकदुंदी, मतलब उनको जन्म समय में देवता भी स्वागत किए थे, उनका नगड़ा बजाए थे, वो कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं, अशेष गुणगण विशिष्ट थे, इतने दिव्य गुण था उनके अंदर, जिनके कारण भगवान को लोभ लगा उनको पिता बनाने के लिए। और दूसरे ओर श्री नंद महाराज, ये दोनों एक्चुअली भाई थे, मालूम है ना, सुरसेन के दो पत्नी थे, एक बरियसी एक मारिसा। बरियसी वो वैश्य पुत्री थी, वैश्याणी थी, और मारिसा क्षत्रियाणी थी। इन दोनों पत्नियों से उनको दो संतान हुए थे। बरियसी जो वैश्य की लड़की थी, उनके जो पुत्र हैं उनके ये थे पर्जन्य, और उनके सर सुरसेन के पिता थे वो, तो इसके लिए ये दोनों भाई हैं, बिल्कुल भाई है, सगे भाई, सोतने सोतन बदल स्टेप ब्रदर है, सोतुले भाई हाँ, ऐसे माने जाते। और क्योंकि ये वैश्य पुत्री से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए आपने वैश्य कर्म को स्वीकार किए थे, परजन्य बाबा भी आ गए थे, नंद जी भी आ गए थे, अपने परंपरा वैश्य परंपरा चलाए रखे, और वो क्योंकि क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे, तो वो अपने शासन आदि कर्म में रहे थे, सुरसेन फिर वसुदेव। तो भाई दोनों हैं, और बड़े घनिष्ठ संबंध था उनमें, ऐसा बात नहीं कि मथुरा वृंदावन दूरी ज्यादा थोड़ी है, 10-11 किलोमीटर तो है जमुना के आर पार, और क्या, कई बार मिलते होंगे, कई बार जाते होंगे, हर एक कार्य में हमेशा, तो परम घनिष्ठ आत्मीय थे दोनों। अब दोनों के यहां भगवान पैदा हुए, दोनों को भगवान ने अपना पापा चुने। इनमें मैं वसुदेव के बताया, नंद महाराज का अंदर जो पुत्र वात्सल्य था वसुदेव से और कुछ अधिक था, वसुदेव के अंदर जो पुत्र स्नेह था उसके अंदर वो आशा करते थे कि पुत्र भगवान हो, भगवान जिसके ऐश्वर्य भावना था मिश्रित था, लेकिन नंद महाराज के जो पुत्र निर्मल पुत्र वात्सल्य था, कुछ मिलावट नहीं था, प्योर प्योर पुत्र स्नेह था, इसलिए उनको पुत्र हो ही नहीं रहते, उनका तो एक एक होते थे मरते थे, वो तो बूढ़ेपन तक होता ही नहीं थे, पुत्र नहीं होते थे, वो तो देवी की माता जब एक एक करके 6 बेटा मर गए, उनके सामने मारा गया, क्या दुख की बात है, जेल में रहते थे, जेल के कष्ट उनके सामने, उनके सामने ही सद्यजात शिशु को मर्डर करना, उनके भाई मारता था और कोई नहीं, इस दारुण दुख यंत्रणा से पता नहीं भगवान आपने आने से पहले अपने मम्मी पापा को इतने दुख क्यों देते हैं, है ना, नहीं दिए इतने दुख। और सातवां एक एक करके मरते थे, सातवां संतान होने से पहले तो देवकी ने जो भी हो उनके कारण से रोहिणी देवी भी गर्भवती हुई, और उनको वसुदेव ने आज्ञा दे के यहां मत रहो, कंस बड़े निष्ठुर है, कुछ करेगा तुम गोकुल चले जाओ, तो इतने प्रेम के संबंध था नंद जी के था, तो उनको पूरा भरोसा था कि नंद के यहां बिल्कुल सुरक्षा में रहेगा और कंस दृष्टि से बच जाएगा, इसलिए उनको सुरक्षा स्थान के लिए उनको नंद के यहां भेज दिए थे, रोहिणी नंद के यहां रुकती थी, और वहीं उनको बलराम उत्पन्न हुए थे, बलराम पैदा हुए थे वहां पे। ऐसे प्राप्त है शास्त्र से कि देवकी देवी और जसोदा देवी दोनों ही गर्भवती थी, दोनों का प्रीमैच्योर डिलीवरी हुआ था, देवकी का भी जो आठवां संतान आठवें महीना में डिलीवरी हुआ था, आठवें महीना के अष्टमी तिथि में, सेम जसोदा की आठवां महीने अष्टमी तिथि में, सेम मिनिमम नौ महीना होना चाहिए ना, प्रीमैच्योर डिलीवरी दोनों के। अब दोनों के यहां भगवान पैदा हुए थे। आप इस वर्णन आगे सुने होंगे, पढ़े होंगे कि वसुदेव तो बेटा को रात रात ट्रांसफर करके लेकर आए, वो तो मानते हैं कि मैं चुरा करके लिया, जसोदा की बेटी हुई थी उसको मैंने रात रात ट्रांसफर कर लिया, उनको बेटा को रख करके बेटी को ले आया, मेरे बेटा को बचा दिया, छिपा दिया, वसुदेव ये मानते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो नंदोत्सव हुआ, नंद के यहां जो पुत्र जन्म के महोत्सव हुआ, इसी वर्णन में आप सुने होंगे कि उन्होंने नाभि छेदन किए, नाल छेदन किए। बताओ जब लड़का को वहां से हटा करके 12 किलोमीटर लेकर गए, नाभि कैसे रह गया भाई, नाभि छेदन नहीं हुआ, ये संभव है क्या? इसमें कहते हैं वो नाल छेदन किए, पूजा किए, सब कितने मतलब बाकायदा वहां से जसोदा की गर्भ से भगवान पैदा हुए थे कृष्ण, नाल छेदन नहीं हुआ था, किए उन्होंने सब और यहां पर लेकर गए। ये रहस्य है, कभी जन्माष्टमी के अवसर पर उसको चर्चा करेंगे। जो भी हो, अभी पुत्र महोत्सव, पुत्र जन्म महोत्सव आदि करने के बाद खुशी के मारे एनुअल टैक्स जमा करने के लिए नंद महाराज अपने सारे गोपों के साथ और अपने गाड़ी लेकर चले थे, अपना गाड़ी मतलब छकड़ा बैलगाड़ी लेकर चले थे, उनका कोई कार थोड़ी ना होता है, टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर नहीं। अब आ करके कंस को वहां टैक्स जमा कर लिए थे, जमा करके वापस जा रहे थे, नंद बाबा के मन में प्रबल इच्छा तो था कि भाई से एक बार मिल लूं, वसुदेव से मिल लूं, इतने घनिष्ठ आत्मीयता, मेरे पास उनके पत्नी उनके बेटे रहते हैं, कितनी इच्छा होता होगा उनको थोड़ा समाचार दूं कि चूंकि। लेकिन जानते थे इन दिनों असुर राज कंस का क्रूर दृष्टि उनको ऊपर पड़ा है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई ज्यादा ये ना पता चले, तो वो नहीं जाना चाहते थे। और हुआ था क्या, वसुदेव देवकी को आठवां संतान के जो कंस ने इतने प्रयास किया था मार डालने के लिए, आठवां किए जो फाइनल सेशन था उसका, फाइनल मैच, तो इसी में निकला वो लड़की। कंस बोला ये कैसे हो गया यार, देवता बोल लेते लड़का हो गया, लड़की कैसे हो गया? तो कंस ने सोचा कि भगवान को विश्वास नहीं किया जा सकता, ये तो कभी भी किस रूप में आ जाते हैं भाई, बिल्कुल सारे देवता असुर खड़े थे उनके बीच में मोहिनी बन गई, हाँ बिल्कुल ऑन द स्पॉट चेंज, मेल फीमेल हो गए, उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी होकर आ सकता है, तो उनको तो रखना नहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो। यद्यपि देवकी माँ प्रार्थना कर रही थी, भैया छोड़ दो, आपकी भांजी है, बेटी है, वो क्या करेगी तेरा, छोड़ दो। वो बोला ना, हे हरि की विश्वास नहीं करना है, चाहे बेटी हो बेटा हो उसको मारना, खींच कर उनके गोद से जब उनको उस बद्ध शिला में बद्ध करने चली, लेकिन गड़बड़ हुआ, उनके हाथ से फिसल गई। कंस को आश्चर्य हुआ, ये अभी जन्म हुआ बच्चा, इतने ताकत मेरे हाथ से, ये प्लास के पकड़ जैसा इतने कठिन पकड़ से निकल गई, मेरा प्रैक्टिस भी था, अभी तक 6-7 मार चुका हूं, ये नहीं कि नया काम कर रहा हूं। अब ऐसे कैसे फिसल गई, आश्चर्यचकित होकर कंस ऊपर देखा, डर के कांप गया, थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो देवी भक्त था, अष्टभुजा देवी सामने डांट रहे थे, मूर्ख कंस, उरी जय माता दी। कंस बिल्कुल डर गया, देखा कि बिल्कुल शेरा वाली सिंह वाहिनी अब सारे अस्त्र शस्त्र कृपाण खड्ग लेकर के डांट रही है, कंस तो थर थर कांप रहे, मुझे अटक ना कर दे, कोई फेंक ना दे, अस्त्र से मरना मारने दे मुझे, देवी मैं आपको कितने नवरात्र की, कितने पूजा की, सप्तशती चंडी भी पाठ करके आज भी आई थी, वाह देवी माँ कैसे, वो तो डांट ही रही थी, वो तो बिल्कुल एक ओबीडियंट छात्र की तरह सब सुन रही थी, थरथर कांप रही थी, मैडम बोलिए जो बोलना है बोलिए। वो बोल रही थी बताए अब ये बात तो सारे दुनिया में हल्ला हो गया, मथुरा वृंदावन पूरे जनपद में हल्ला हो गया कि ऐसे ऐसे हुआ और जो वसुदेव की आठवां संतान और बेटी निकली और बेटी क्या हो तो साक्षात दुर्गा जी, वो तो उनका हाथ से फिसल करके स्वर्ग चली गई उठ गुनाट पीट करके। कंस भी हाई टेंशन में था और उनसे डांट खा करके वापस आया जेल में, वही कारागार के सामने तो था, आ करके देवकी से माफी मांगी, बोले देवकी प्लीज एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी, वसुदेव के पास गए मुझे माफ कर दीजिए और उनको आत्मज्ञान पढ़ाया भगवद गीता, उन्होंने भी गीता कोर्स किया होगा, पढ़ाया उनको, देखियो ये मेरा क्या दोष था, भाग्य ही ऐसा था, वो मेरे भांजा मेरे हाथ में मरने वाले थे, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी मारता। देवकी माता इतने सही थी, वो भी बोला भैया मुझे पता है तू मुझे कितने प्रेम कर रहा था, मैं क्या करूं, तू विधि के खिलौना बन गया विधि के हाथ में, मुझे पता है मैं तुम्हारा सो नियर एंड डियर था लेकिन तू कैसे ऐसे हो गया ना ही, तो मैं भी सोच नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए मुझे माफ कर दो, चलो जो हो गया छोड़ो यार, ये सब सभी अपना अपने भाग्य की फल पाते हैं। तो उनको तुरंत कंस ने मुक्त करा करके जेल से और रॉयल स्टेटस में फोन किया होगा, सब डीजी पीजी सब आ गए, सब डायरेक्टर जनरल सब सुपरिटेंडेंट सब आए, सर स्वयं उनको लेकर गया, उनको आपस उनके घरवाड़ी दिलाया, सारे मेंटेनेंस सब फिक्स बिल्कुल सारे सुविधा दे दिया फुल, और बोला कोई गड़बड़ हो तो फोन करना मुझे डायरेक्ट, सारे सुविधा प्रदान करके उनको रखा था, क्योंकि बोला कि वो काहे बेकार है उनको कष्ट दे रहा, जो मैडम तो बोल देवी तो बोलकर गई कि भाई जो मुझे मारने वाला तो और कहीं पैदा हो चुका, तो अभी उनको सुविधा दे। वसुदेव और देवकी अपने घर में थे, अभी उनके और पत्नी वापस नहीं आए थे, वसुदेव बड़े ज्ञानी थे समझदार, वो जानते थे ये असुर कंस को देवी से डांट पड़ा करके मुझे सुविधा दिया लेकिन पता नहीं फिर कभी मूड खराब हो उसका, कोई भरोसा नहीं उसको, लेकिन रहते थे। और वसुदेव तो साक्षात भागवत आज्ञा के पूरे कठपुतली जैसे हैं, भगवत इच्छा से अपने इंद्रिय चालना होता था, बिल्कुल समर्पित भक्त थे वसुदेव, क्योंकि छोटे मोटे महापुरुष नहीं थे, उनके दिन भर समय उपासना में बीतता था, वो जानते थे और कुछ नहीं है, और जो भी हो उनके मन में उनका राज्य गया, वो राजपद गया, उनके पुत्र ही उनको इस प्रकार अत्याचार करके जेल में डाला, ये उग्रसेन के बात में कह रहा हूं, और वसुदेव भी उनके पूरे सिटी में जो उनके सौभाग्य जो उनके सम्मान सब गया, उनके कई 17-18 पत्नियां थी सब भाग कर इधर उधर गए, किसी से भी उनका संतान नहीं हुआ था, और देवकी के साथ आकर रहने लगे, वो किसी को फोन कर बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई अभी अवस्था इतने समुचित नहीं है, तो उनको पता नहीं था, स्मार्टफोन तो तभी था नहीं, तो नंद आदि जाकर टैक्स जमा करके आते समय में एक परिचित व्यक्ति को रास्ता में मिले, तो उनको बोले भैया जाकर के वसुदेव को मैसेज दे देना कि मैं आया था इसे इसे, मैं पूरा स्टाफ के साथ जाम कर जा रहा हूँ, मैं अभी आउटस्कर्ट में मथुरा के बाहर आम्र उपवन में सिटी के बाहर जो बगीचा है वहाँ पे आउटर में मैं हम आज रुकेंगे वहाँ, क्योंकि जद्य प्रॉब्लम इच्छा था भाई घर जाने के लिए, जानते हैं मेरे साथ बहुत स्टाफ हैं, गोप बहुत हैं, सब बैलगाड़ी हैं, इतने बैल पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी होता तो पार्किंग हो भी जाता, बैल तो अपने चरेंगे, उनके लिए चारा भी नहीं, फील्ड चाहिए, क्योंकि नंद जी गोप हैं, उनके सारे भाई सब सारे गोप आए हैं, गोपों का यही हमेशा लक्ष्य, उनका एक ही प्रोजेक्ट है, भले हमको खाना ना मिले रोटी ना मिले भूखे रह जाए लेकिन हमारे उपजीव्य एक गाय बैल को चारा मिलना ही मिलना है, वही उनका ध्येय था। तो इसलिए जहां पे सुविधा हो, तो सनंद जी बोले बड़े भाई कि कोई बात नहीं, सिटी में कहां रहे, चलिए बाहर में जमुना किनारे खूब हरी हरी घास है, जंगल है, जमुना जी के पास सुपास है, पानी भी पियेंगे, बैल को छोड़ देंगे, वहां रुक जाते हैं आज और क्या है। तो दोपहर मध्यान्ह पूर्व में वो टैक्स जमा कर, सुबह सुबह निकले थे और जो भी जमा करना था टैक्स वगैरह जो जो दे करके मध्यान्ह समय पहले से वो रिटर्न हो चुके थे। मथुरा में रहने के लिए ज्यादा उनकी इच्छा नहीं था, लेकिन इच्छा जो था और डर के मारे वहां जा नहीं सकते थे। अब जा करके जमुना पुलिन पर सुंदर हरी हरी घास के मैदान देख करके वहां अपने डेरा डाले और बैल को खोल दिए। बैल अपना घास चरते थे, जमुना पान पिया, खुद से वो अपना डेरा लगा करके प्रसाद तो सुबह से लेकर आए थे, सब अपना पैकिंग टिफिन लेकर आए थे। तो स्नान किए, जमुना जी में मध्यान्ह स्नान किए, नून बात मध्यान्ह स्नान करने के बाद और अपना अपने भोजन सब लेकर आए थे, छकड़ा से गाड़ी से खोले, खोल करके बैठ गए, राउंड करके बैठे। उनका कौन सा डाइनिंग टेबल ना इसे कोई बिछाना होता, वो तो गोप है, वो तो गाय बछड़ा में चराने एक्सपर्ट है, वो तो घास के ऊपर बैठे खाते हैं जंगल में, जंगल मंगल उनका पिकनिक की तरह, वही घास के ऊपर बैठ गए जमुना पुलिन में बैठ कर पुलिन भोजन शुरू हुआ। सारे जितने गोप आए थे सब मिल करके जमुना किनारे मध्यान्ह भोजन किए, भोजन करके अभी जस्ट पंक्ति भोजन अभी पूरा ही हुआ था, भोजन करके अब आचमन आदि करके बैठे ही थे, थोड़ा धूप आ रहा था अब बैठे ही थे, इतने में ही किसी ने आकर बताया कि अब उससे पहले मैं बता रहा हूं, वो वहां जाकर डेरा लगा रहे थे, एक जो सेवक वसुदेव के जिनके हाथ में नंद जी ने मैसेज भेजे थे वो आकर के सीधा, वसुदेव जी अपने उपासना गृह में थे, सीधा आकर के बोला कुमार ब्रजपति आए हैं, बहुत सारे गोपों के साथ आए हैं, बहुत सारे चकड़ा बैलगाड़ी लेकर आए हैं और ऐसे मुझे बताया कि वो जैसे ब्रजपति आए शब्द सुने उपासना धड़पड़ होकर उठे वसुदेव जी, क्या उनको लगा कि मेरे घर में आए क्या, जल्दी से उठे, कहां है, इतने उद्विग्न से उठे क्योंकि मन में बहुत विचार था कैसे उनको मिलूं, क्योंकि मेरे पत्नी मेरे बेटा और दो एक एक नहीं दो दो बेटा, और जो बेटा तो जीवन प्राण वही है, कैसा है, और सबसे डर है कि उनको पता तो नहीं चल गया मेरी चोरी के बारे में, जो गलती करता है ना चोरी कर रहा है चोर को गड़बड़ धड़धड़ धड़ होता है, किसी को पता ना चला, बिल्कुल इशारा देखता है सारे, तो उनका मन में गड़बड़ हो रहा था, कोई पता नहीं चल गया था उनको मैं ओवरनाइट जो गड़बड़ किया था, तो इसके कारण से झट से उठे, पूजा से उठकर कहां है। तो सेवक ने बोला नहीं वो यहां नहीं है, वो तो टैक्स जमा करने के लिए आए थे और जमा करके मुझे रास्ता में मिले, मुझे बोले कि वसुदेव जी को बता देना, और उन्होंने सिटी के आउट जो बगीचा है आम बागान वहां है, अपने कैंप लगाए डेरा डाल। तो वसुदेव तुरंत उद्विन से थे, प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा ठीक है। तो तुरंत सेवक चला गया और देवकी को बुलाया, बोले देवी तुमने सुनी है ब्रजपति आए हैं, मैं थोड़ा मिल आऊं ना, अवश्य मिलना चाहिए, वो आए हैं, और बेटा हमारा कैसा है, और जीजी का खबर तो बहुत दिन से मिला ही नहीं, वो तो स्वयं आपको बतावेंगे, आप अवश्य जाइए, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, बड़े भाई हैं, मेरा भी प्रणाम उनको बताना। तो वसुदेव अपने गाड़ी निकाले और चल पड़े अपने रथ लेकर के जमुना की किनार जो आउटस्कर्ट में जो बगीचा में गोप लोग थे वहां चले। वहां पहुंचते पहुंचते उनका नून लंच पूरा हो चुका था, गोपों का लंच पूरा हो चुका था, और खा पी करके अपने आचमन करके उनका कौन सा टैप है, जमुना में जाकर हाथ मुंह धोए आकर बैठे ही थे, इतने में ही किसी ने आकर बताया नंद महाराज को वसुदेव जी की गाड़ी आ रहा है, पार्किंग लगा रहे। जैसे सुने तो नंद महाराज उठे, उनका मन में तो प्रबल इच्छा था, बहुत इच्छा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन कंस के आतंक के कारण मिल नहीं पा रहे थे, खबर भेजे थे वो मन में सोच रहे थे कि अवश्य आएंगे मुझे मिलने के लिए, और आ भी गए। जब सुने तो तुरंत प्रसन्न चित्त होकर के उठकर गए, उनके साथ उनके भाई सब सनंद उपनंद सभी गए, जा करके वसुदेव जी आ गए, भुजा फैला करके बाकायदा चिपक गए, गले से गले मिले और दोनों ही गदगद होकर पुलकित होकर के मिले, घंटों तक आलिंगन मुद्रा में रहे। ऐसे प्रेम आलिंगन था, ऐसे प्रेम के मिलन था, दोनों मिले बड़े दिन के बाद। वसुदेव जी तो कहे कि मेरा तो कभी विचार में भी नहीं था कि इसी जन्म में आप जैसे घनिष्ठ आत्मीय का दर्शन और संग प्राप्त होगा। मैं बराबर सोच रहा था, मैं तो सोचा था कि पता नहीं जेल में मेरा ड्यू डेट ओवर हो जाएगा, लेकिन कंस ने मुझे जेल से निकाला और सारी सुविधा देकर कभी सब कुछ व्यवस्था तो कर दिया है, लेकिन क्या लेकिन क्या, मेरे बेटा तो आपके यहां है, अब आतुर हैं आपने पुत्र द्वय के बारे में जानने के लिए, बहुत आतुर हैं, लेकिन अंदर में दर गड़बड़ा रहा है, कोई उनको तो सुराग पता नहीं चल गया कहीं से कि इसे में चोरी चारी किया था, चैन चांद किया था, क्योंकि वसुदेव और देवकी अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते थे, क्योंकि दे आर रियली जेंटलमैन, ऐसे ग्लानि महसूस करते थे, क्यों, क्योंकि देखो हम अपने बेटा को बचाने के चक्कर में उनके पुत्री को चोरी करके लाए मरवाने के लिए, मरी नहीं जो चली गई अलग बात है, छूट गई लेकिन गई तो, मेरे बेटा को बचाने के लिए मैं दूसरे के पुत्र को उनको बिना बचाए सोए सोए लेकर आ गया, कितने जघन्य कर्म है, कितने गलत काम, बताए बिना चोरी करके ला करके मेरे बच्चा को बचा दिया, तुन के बच्चा को संतान को मरवा डालने के लिए लाया। दोनों ही वसुदेव देवकी इतने शुद्ध हृदय थे, सदाचारी थे, बहुत अंदर अंदर ग्लानि होता था, बड़े दुखी होते थे कि हमें क्या किया, हमने ऐसे कैसे कर दिया, और सोचते कि नंद महाराज कितने उदार है, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं है, मेरे पत्नी की पालते हैं, मेरे बेटा को पालते हैं, मैं भी उन्हीं के बेटी को चोरी करके लाया, और कितने अच्छे हैं, कितने उदार हैं, तो उनको ना मिल करके कैसे रहे। मन में तो बहुत विचार होता था कि नंद मथुरा में आए हैं और मैं घर में बुलाकर दो चार दिन उनके आतिथ्य ना करूं, चापानी ना पूछूं, लेकिन करूं क्या, अभी समय बड़ा विषम चल रहा है, ये बात नंद जी भी समझ रहे हैं, इसलिए वो भी तो नहीं आए, खुद वो समझ रहे हैं कि समय अभी ठीक नहीं है, कंस का कोई दृष्टि पड़े तो ठीक है, उन्होंने नहीं आए, बड़े समझदार है, वो आकर बड़े आतुरता से पुत्र के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट पूछे नहीं, आतुरता उद्विग्नता हृदय में है जानने के लिए, लेकिन छिपा करके जब मिलन हुआ बड़े उठ करके तुरंत पूछते हैं। ये 23 नंबर श्लोक में ये पहला मिलने के बाद आलिंगन से हट करके, और वो भी क्या कोई चेयर फोड़ी थोड़ी था जमुना किनारे बागन में, वो अपने चादर बिछा दिए घास के ऊपर, अपने चादर घास के ऊपर बिछा दिए, वो तो स्वयं घास में बैठे थे, बैठकर खा रहे थे, लेकिन ये वसुदेव है ना, क्षत्रिय है, राजकुमार है, यद्यपि नंद बाबा वसुदेव के एज में डबल थे, उनकी उम्र के दुगना उम्र था उनका, तो एज के दृष्टि से तो उनके पिता के सदृश होंगे, लेकिन वो इसीलिए वसुदेव उनको बहुत सम्मान करते थे, लेकिन नंद बाबा क्योंकि आपने वर्ण छोटे वर्ण है, वो वैश्य वर्ण के है और ये उच्च वर्ण क्षत्रिय वर्ण है, इसलिए उनको हमेशा बड़ा मानते थे, वो भी इतनी भद्रता की सीमा था उनके पास, वो अपने आप को छोटा मानते थे और वसुदेव जी को बड़े मानते थे, इसलिए वो आए राजकुमार, अरे हम तो गाय चलाने वाले है राजकुमार है, तो उनको बैठने के लिए ये थोड़ी नीचे बैठेंगे, तो उतरे डालकर झाड़ कर बैठा दिए, घास के ऊपर बिछा दिए, बैठिए, बैठ गए और सारे गोप बैठ गए, बीच में श्री नंद जी और वसुदेव जी दोनों बैठ गए, और दोनों गदगद कंठ है, दोनों के आंख से आंसू बह रहा है, दोनों के शरीर पुलकित है, वसुदेव जी ने पूछे, बोले हे भाई क्या बात कहूं, इस बुढ़ेपे में मैं तो आशा ही छोड़ दिया था। आप भी निराशा हो गए होंगे संतान के ओर से, कोई संतान ही नहीं हो रहे थे। आप भैया भाभी दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो चुके थे, कोई संतान नहीं हो रहे थे, इस कारण से आप हताशा हो चुके होते, कोई आशा ही छोड़ दिए होते, लेकिन फिर भी इस परिणत अवस्था में, इस बुढ़ेपन में, जानते तो थे उनको एक बेटी हुआ था मैं चुरा कर लाया, लेकिन पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछे कि अगर बेटा हुआ करके, जानते थे मेरा बेटा ही है, उनको बेटा करके मानते हो, लेकिन इसको ना पूछ करके बोलते हैं, प्रजा आपके कोई संतान हुआ है, मैंने सुना इस बूढ़े उम्र में आपको कोई संतान हुआ है। अब ये नहीं पूछ रहे कि बेटा की बेटी, क्योंकि मन में डाउट हो रहा है, क्योंकि बेटा तो उनका है ही नहीं, बेटा तो मेरा है, और जो उनकी बेटी था अगर ये बात उनको पता चल जाए तो पुल खुल जाएगा, तो मेरे क्या सोचेंगे, तुम आके चोरी करके लिया मेरी बेटी को मरवाने के लिए, तो मन में डाउट हो रहा है, तो इसीलिए दोनों ना बेटा ना बेटी को ना पूछ करके बोलते हैं कि संतान हुआ मैंने सुना, अब कैसा है, अब उनसे सुनना चाहते हैं कौन सा संतान है बेटा है कि बेटी, खुद बोले तब उनको पता चलेगा कि उनको पता है या नहीं, मेरा जो षड्यंत्र उनको पता है कि नहीं, इसलिए जानने के लिए वो भान निकले पूछ रहे थे, आपका मैं सुना कि संतान हुआ है इस बूढ़ेपन में। दिष्ट्या, ओ भाग्य, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो आपको बधाई देने के लिए आया हूं। अब आगे पूछेंगे, बाकी बात आप श्लोक में सुनेंगे। अब उनके फेशियल फीचर, उनके मुख अंग भंगी, उनके लक्षण से देख करके नंद बाबा कुछ बोलने से पहले, नंद को पूछ, नंद बाबा कुछ बोलने से पहले नंद जी के बड़े भाई सनंद बैठे हुए थे, वो तुरंत बोल पड़े, बोले हाँ वसुदेव, वो भी मिले वसुदेव जी से, वो भी भाई की तरह भाई तो थे ही, बोले क्या कहूं, अरे जब तक उनके वो बेटा हमारे ब्रजराज कुमार, ब्रजराज कुंवर आने तक आपके जो बेटे, मतलब उस सभी नंद पूरे गोकुल में पता है कि रोहिणी देवी उनके पुत्र है, उनके पत्नी है, और वो जो बेटा हुआ है उनकी है, बोले आपके जो बेटा हुआ, अरे वो तो हम सोच रहे थे गंगा बह रहा है करके, इतने सुंदर था, मुनी खुल रहा था, हंस भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था, हाँ गुंगे बहरे हम सोच रहे थे, लेकिन जब ब्रजराज कुमार प्रकट हुआ तभी पता चला, वो वेट कर रहा था उन्हीं के लिए, कोई बात ही नहीं कर रहा था, हंस भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, सब कुछ क्रिया शुरू किया, एक्टिवेट हुआ जब वो आए, नहीं तो इनएक्टिवेट था। और साक्षात अब दोनों ही तो मानते हैं, अब वसुदेव वही सुनना चाह रहे थे कि दोनों मेरे बालक निश्चित रूप से मुझे तो नहीं जानते होंगे, आपको ही पिता माता करके, आपको ही पिता करके जरूर मानते होंगे, और मन में ये बात सोच रहे हैं कि सचमुच मेरे से पुत्र वत्सलता से पुत्र पालन में वो एक्सपर्टिस ज्यादा है, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, इसीलिए मेरे बेटा मेरे पास नहीं रहे, उनके पास चले गए, वो ठीक से लालन पालन करते होंगे, उसके बारे में भी जानकार लेने चाहते थे, जानकार लेने से पहले ये पहले निश्चिंत होना चाहते थे कि नंद महाराज को ये पता तो नहीं है कि मैं जो गड़बड़ किया उनके बेटी को चोरी करके लाया, ये सब घटना तो पता तो नहीं है, लेकिन नंद महाराज बोल पड़े, बोले भाई नंद वसुदेव सच में क्या बताऊं, मेरा तो संतान हुआ तो लो जो हुआ जैसे हुआ, लेकिन मैं तो आपके बारे में चिंतित होकर दुखी हो रहा हूं, इतने दुख भी किसको भगवान देते बताओ, कितने एक एक करके लड़के तो मारा गया, असुर कंस ने मारा, एक लड़का तो इधर गया, और अष्टम जो हुआ एक बेटी हुई थी वो भी स्वर्ग चली गई, वो भी ना रही पास में, उनको तो ही पता था, बता रहे आ हा, आपके पास कोई नहीं है, इतने संतान आठ आठ संतान होकर भी एक भी कुछ नहीं है, मम्मी पापा खाली, आठ संतान होने कर भी घर में कोई आवाज ही नहीं है। और मेरा तो इतने वृद्धपन में बेटा हुआ है और वो तो असाधारण है, और इस बात को आगे बताएंगे। लेकिन इस बात को सुन करके नंद जी से वसुदेव बिल्कुल कन्विंस्ड हो गए, कन्फर्म हो गए कि मेरे चोरी के बारे में उनको पता नहीं है। अरे कंस को ही नहीं पता, चलो उनको क्या पता, ये इतने हाई टाइट सिक्योरिटी रखा था, वो भी फेल, उनका भी षड्यंत्र फेल, उनको पता नहीं। वो खुश होगा तब बात करने लगा, अरे आप कैसे हैं और बाकी सब, आपके गाय गोष्ठ ठीक है कि नहीं, सब घास पास ठीक मिल रहा है कि नहीं, बातचीत खोल करके। अभी तक डर रहे थे कि हो ना हो उनको पता चल जाए, हाउ दे विल ट्रीट मी, मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट होगा, डर के मारे अभी इस भय इस श्लोक में ये निर्भय हो गए। इस श्लोक को पूछ करके अब उनका आंसर जो नंद जी ने दिए कि इस प्रकार से तो बिल्कुल निर्भय निर्भिक्षित हो गए। बोले ना ना उनको पता नहीं है, अब रहने दो रहस्य को रहस्य में रहने दो। वो तो फिर आगे पूछेंगे और अपने पुत्र की बात बताएंगे कि ये तो साक्षात आपको ही बेटा मानता हो। वो बोलते हैं कि वो अपना तरफ से अंदर में रखते हैं कि मेरे दो बेटा, लेकिन मेरा पुत्र तभी आपको मानता होगा पिता के रखे। ये बात पूछेंगे, जो बात को कहना और जानना चाहते थे, आतुरता से आए थे इस बात को सुनने के लिए, सबसे पहले कन्विंस करना चाहते हैं कि उनको मेरा षड्यंत्र रहस्य को तो पता ना चले। इसी कारण से इस श्लोक में घुमा फिरा के उनको रोध होकर के पूछते हैं कि आपके तो संतान नहीं हो रहे थे, बड़े दुख की बात, इसी बूढ़ेपन में एक संतान हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन क्या संतान हुआ बेटा बेटी सब जानते हैं लेकिन नहीं बताते ये पता लगाना चाहते हैं। सचमुच ये कृष्ण बलराम दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, दोनों ही के ये अद्भुत पितृ मिलन है, दोनों के पिता है, दोनों ही दोनों के पिता है। बलराम भी नंद को अपने पिता ही मानते थे, हाँ, क्योंकि वही जन्म हुआ कर्म सब कुछ वही हुआ। और कृष्ण तो आत्मज नंदात्मज, उनका नाम तो नंदात्मज है, वो नंद के बेटा ही थे। लेकिन वसुदेव तो कन्विंसड कन्फर्म, ये दोनों मेरा ही है, वो डुप्लीकेट सोच रहे हैं पालन हो रहा है या कैसे। अब ये जो नंद और समस्त गोपों के अंदर जम करके ये विश्वास था और सत्य रूप से वो मानते थे, वो जानते थे कि ये कृष्ण जो है ये हमारे नंद कुमार है, हमारे ब्रजराज हैं, हमारे हैं, इतने अच्छे हैं, पूर्ण मोर देन 100% बिलीव था, वो मानते थे, बिल्कुल अपना ही मानते थे। बलराम ठीक है, वो हैं इधर ही रहते हैं, पता नहीं वसुदेव अगर बुलाएंगे बुलाएंगे, नहीं तो नहीं, वो भी रहते हैं, लेकिन ये तो अपना ही है ब्रजराज कुमार मानते थे। और बलराम को भी अपना मानते थे, रोहिणी देवी तो वहीं रहे ना, उन मानते थे। लेकिन ये जो उनके मान्यता के ऊपर कुठारघात होगा जब इस लीला, ओहो हो, बड़े दारुण बड़े करुण लीला है, जब कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर चले गए थे, उनके साथ सारे नंद गोप आदि सब गए थे, सारे भी गए थे, तभी कंसबद्ध होने के बाद में और कुछ दिन भी रुके, अब उनको वापस लेकर चल रहे, बोले दो तीन दिन के लिए फेस्टिवल के लिए आया था, चल, नहीं आ रहे थे कृष्ण बलराम। वो बोले हम कैसे जाएंगे आपको छोड़ करके, हम आपको लेकर आए, किस मुंह से जाएंगे अपने घर, आपके लिए तो आए। महीना दिन रुक गए, कृष्ण बलराम जाने के लिए नाम नहीं ले रहे। अब वो जो लीला कभी फुर्सत आने से चर्चा करेंगे, बहुत दारुण करुण हृदय विदारक लीला। कृष्ण बलराम को लेकर आए थे मथुरा और खाली खाली छकड़ा लेकर जा रहे हैं वापस। ओहो, ब्रज में सारे अपेक्षा करके बैठे होंगे लेकिन खाली जब लेकर जाएंगे किस मुंह से किस भाव से किस प्रकार जाते होंगे। जब जिस समय उनको पता चल गया अब वो तो क्या होगा कभी वर्णन करेंगे, लेकिन इस श्लोक में इस दोनों महा वात्सल्यमय आदर्श पुत्र स्नेह के प्रतिमूर्ति दोनों पिता, दोनों पिताओं के मिलन, आप लोगों से अनेक पिताएं हैं लेकिन पिता के भावना कैसे होना चाहिए पुत्र के प्रति। ये दोनों भगवान के पिता हैं, एक से एक बढ़कर के दोनों, दोनों के मिलन और उनका बातचीत इस अध्याय में है। इस पंचम अध्याय में नंद वसुदेव के मिलन, एक से एक हृदय स्पर्शी, एक एक बात एक एक भाव सब हृदय स्पर्शी है क्योंकि दोनों भगवान के पिता है और दोनों अगाध पुत्र प्रेम में सरोवर है, लबालब भरे हुए हैं। दोनों के मन में संदेह है, वसुदेव के मन में तो फुल डाउट है और वो भी सोच रहे हैं एक बेटा मेरा एक बेटा उनका, वो भी सोचते हैं कि दोनों ही तो मेरा ही। इस भावना में दोनों पिता के जो मिलन बातचीत इस अध्याय में हुआ है। कृष्ण बलराम दोनों अपने घर बैठ करके माखन खाते होंगे और दोनों पिताओं का इधर सीरियस टकिंग। जो भी हो ज्यादा दिन ही वसुदेव को पता चल गया था कि आज सुबह सुबह पुतना मैडम पिकअप ली है, हाँ वहां से निकली उन्होंने, तो उनको जल्दी था कि ये यहाँ लेट करेंगे तो यहाँ उपद्रव मचाओगे, तो उनके से भेजे जल्दी जल्दी, उनके पास ज्यादा समय बातचीत नहीं कर पाए, जल्दी सूचना देकर उनको भेज दिए, बोले भैया जल्दी जाओ कुछ उपद्रव होने वाला है, ये नहीं बताया कि पुतना गई थी करके, गो फास्ट। लेकिन वो तो जाएंगे रास्ता में ही, घटनास्थल में सब होगा वर्णन आप सुनेंगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन कृष्ण बलराम के मिलन, उनसे बढ़कर के नंद वसुदेव के मिलन भी है, दोनों ही भाव मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं, पुत्र स्नेह सरोवर हैं, उन दोनों का बातचीत मिलन इस अध्याय में श्री परमहंस चूड़ामणि सुखदेव ने परीक्षित को इस भाव को वर्णन करते हैं बिल्कुल यहाँ पढ़ कर, किस भाव से उन दोनों का मिलन हो रहा है और मथुरा में। हरे कृष्ण, आप लोग को धन्यवाद है, अब तक आप सब मथुरा में जमुना किनारे आउटस्कर्ट में बैठे थे, अब वापस आ जाए कृष्ण बलराम के पास क्योंकि अभी उनके गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने का टाइम है। हरे कृष्ण। यस हाँ बोलिए।
थैंक यू महाराज फॉर सच ए नाइसली डिस्क्राइबिंग दिस पास्ट टाइम, बहुत ही सुंदर आपने डिपिक्ट किया पूरा का पूरा प्रकरण। मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि जो वासुदेव थे वो शुद्ध भक्त थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान ने उन्हें अपना पिता चुना, और एक भक्त में जो है समस्त देवों के गुण होते हैं, तो फिर कैसे एक इतने शुद्ध भक्त के हृदय में स्वार्थ की एक भावना जाग गई कि अपने बेटे को वहां पर रख आया, उनकी पुत्री को ले आया, हालांकि सब कुछ योग माया के तहत भगवान की लीला के तहत हुआ था, लेकिन इसको एक आम आदमी की दृष्टि से हम कैसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, और फिर वो वेरीफाई भी कर रहे हैं कि इसको डाउट तो नहीं हुआ, और उसके बाद वो शांत भी हो गए, तो क्योंकि अगर भक्त से मान लो कोई गलती भी हो जाती है, इसको अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें, मान लो हमने कोई ऐसा सीक्रेट है हमारा जो हम नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन जब हृदय शुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं वो रिवील होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुदेव बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि चलो इनको पता नहीं चला, अब आगे बात की जाए, तो इसको मतलब कैसे।
यही तो है, राजपुत्र है, पॉलिटिशियन है, परफेक्ट
भक्त भी है।
एक्चुअली उन्होंने जब कृष्ण को पुत्र रूप में देखे जेल के अंदर, तो वसुदेव बहुत व्यग्र हो गए उनको बचाने के लिए, बोले ना भले मेरे सारे बेटे मर गए, उनको तो मैं बचाऊंगा। और साक्षात फुल यूनिफॉर्म में थे भगवान, सारे यूनिफॉर्म पहन के आए थे और क्या। बाकी लड़के तो नंगे नंगे आते हैं, लेकिन वो तो भगवान ने पूरे पूर्ण आभरण अलंकार युक्त होकर आए थे, चतुर्भुज शंख सारे पहन कर आए थे। वसुदेव जी देखकर हाथ जोड़कर, पिता बेटे को हाथ जोड़ के पहले प्रणाम कर रहा है और वो चाहते थे बचाने के लिए, इतने व्यग्र थे, वो प्रार्थना करते थे दोनों पति पत्नी, और पुत्र के रूप में कहो भगवान के रूप में, तो देख लेते भगवान साक्षात। बोले कि आप नॉर्मल चाइल्ड हो जाइए। बोले क्यों? ना हम आपको बचाना चाहते हैं, आपको नहीं मरवाना चाहते, आपको नहीं मरवाना चाहते, आपके लिए इतने कष्ट सहे। अब बताओ कंस का मथुरा नगरी इतने हाई प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर जेल इतने सुपरविजन है, आठवां केस के लिए कितना हाई टाइट सिक्योरिटी था, चप्पे चप्पे सब मशीन लगाकर चेक चेक करते होंगे, और उसके अंदर बड़े टाइट कवाट, इतने मोड़े मोड़े सिकुड़ी और ताला लगा हुआ के उसके अंदर बंद है, उसके अंदर हाथ भी बंधा है, बेड़ी कड़ी दोनों बंधे हुए हैं। मन में विचार है कि मैं बचाऊं आपको, हाँ क्या अब कैसे कर सकते हैं अपने, लेकिन भावना इतने उत्कट भावना था कृष्ण को सेवा करने के लिए, बचाने के लिए, वो कृष्ण ने ही उनको बुद्धि दिए कि ऐसा करो, अब ले चलो मुझे वहां गोकुल में लेके एक्सचेंज करके ले कर। उनको क्या पता था, उनको थोड़ी पता था कि यहाँ बेटी हुआ, कुछ कुछ नहीं पता था उनको। स्वार्थ फार्थ उनका स्वार्थ केवल था कृष्ण सेवा। क्या स्वार्थ था? कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा करूं, उनके रक्षा करूं, उनको बचाऊं, उनको आनंद प्रदान करूं, वही स्वार्थ था उनका, कि कोई स्वार्थ नहीं था। उनको कुछ नहीं पता था कि गोकुल जाना है, मन से लाना है, कुछ नहीं पता था। ये सब करवाने वाले कौन किए, उनको थोड़ी पता था, कुछ नहीं। बोले जाओ, वो तो तभी गए, और इसे करके लेकर आओ। वो हाथ बंधा था, पैर बंधा था, अंधकार था, मिड नाइट अमावस्या के आठवां रात्रि, बारिश होकर के पानी भरा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं उनको सोच रहे थे कि छतरी ले लूं, टर्च भी नहीं है, कैसे मिड नाइट में जाऊं अकेला, जमुना बाढ़ है, नौका नहीं मिलेगा, नथिंग। इतने कन्फर्म निश्चित थे कि मैं बचा डालूंगा, इतनी जो उत्कट कृष्ण सेवा की लालसा, ये सब उसी के कारण हो गया। तो उनके स्वार्थ नहीं था, प्रबल परमार्थ था, उसको स्वार्थ मत कहिए। भले ही आपने को सुनने में कहने में ऐसा लगता है, लेकिन ये स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था, भगवान ने करा है। ओके, यस।
आज दो प्रश्न है। एक तो रोहिणी माता जब व्रजधाम में थी और ट्रांसफर किए, तो ऐसे मतलब गर्भवती हो गई, क्योंकि वसुदेव जेल में बंद थे।
मैं आपके बलराम बुलाम तो कहा तो था, आप सुन लीजिए उसको, क्लास आप सुनते हैं।
और दूसरा महाराज, ये कौन सी स्टेज पे जाके रिवील हुआ कि कृष्ण नंद महाराज?
अब नेक्स्ट कभी चांस मिलेगा तो मैं बताऊंगा, मैं तो बताया ना कि दोबारा बताऊ। आपके जन्मदिन है, इसी को लेकर सुना। थैंक यू फॉर योर हैप्पी बर्थडे, है ना? नहीं, कृष्ण बलराम के जन्म लीला चल रहा है, उसमें आपके जन्म शामिल हो गया, है ना? नहीं, प्रेम अंजन है, नाम भी प्रेम अंजन है। और कुछ? श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, समवेत भक्त वृंद की, हरे कृष्ण।